ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜಮುನ ತೀರ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜಮುನ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಮುನ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜಮುನ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಮುನ ತೀರ ವನಚಾರಿ राधा माधव कुंज बिहारी इस डिवाइन रेशल चरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत शिष्यमद इस डिवाइन रेशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रिंस कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीप मयपुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ग्लोरियस टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का सातवां स्कंद है अध्याय पंद्रहवां है श्लोक संख्या 59 क्षितियादीनाम इह अर्थानाम छाया न कतया अपि हि न संघात विकारः अपि यद्य न पृथक् न अन्वितः मृषा दो इंद्रियां काम नहीं कर रही है जरा मेरे साथ दोहराइए पढ़ नहीं पाते तो सुन तो पाओगे अभी क्षित्यादिनाम इहार्थानाम छाया न कतमापि न संघातो विकारो अपि न पृथंग्वांवितो मृषा क्षित्यादिनाम इहार्थानाम छायानम कतमापि न संघातो विकारो अपि न पृथंगान्वितो मृषा क्षित्यादीनां निहार्थानां छाया न कतमापैः न संघातो विकारोऽपि न पृथं न वितो मृषा क्षिति आदि नाम पृथ्वी इत्यादि पांच तत्वों का यह इस संसार में अर्थानाम उन पांच तत्वों का छाया प्रतिबिंब न तो कतमा इनमें से कौन अपि निसंदेह ही निश्चय ही न तो संघात संयोग विकार रूपांतर अपि यद्यपि न पृथक भिन्न नहीं न अन्वितः न तो निहित मृषा ये सब सिद्धांत निरर्थक हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस जगत में पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, किंतु शरीर न तो उनका प्रतिबिंब है न उनका संयोग या उनका रूपांतर, क्योंकि शरीर तथा इसके अवयव न तो पृथक पृथक है न मिश्रित, अतएव ऐसे समस्त सिद्धांत निराधार है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जंगल पृथ्वी का विकार अवश्य है, किंतु एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित नहीं होता। यदि उनमें से एक काट दिया जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरा वृक्ष भी कट गया। अतएव जंगल में न तो वृक्षों का संयोग है, जंगल स्वयं न तो वृक्षों का संयोग है न विकार, विकार यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने की है, मया ततम इदम जगत सर्वम अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानी न चा हम ते स्ववस्थितः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सभी जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। श्रीमद् भगवद गीता का नौवां अध्याय और चौथा श्लोक है। हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है, जैसा कि कहा गया है कि पराश शक्तिर विविधीय श्रूयते, भगवान की विविध शक्तियां होती हैं जो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त होती हैं। शक्तियों का अस्तित्व है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी साथ साथ विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हर वस्तु उनकी शक्ति है, अतएव वे एक साथ हर वस्तु से अभिन्न है और हर वस्तु से भिन्न भी नहीं। अभिन्न और भिन्न, अंग्रेजी में उसे वननेस एंड डिफरेंस कहते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा कल्पित यह सिद्धांत कि आत्मा पदार्थों का संयोग है और पदार्थ आत्मा का रूपांतर विकार है, या यह कि शरीर आत्मा का अंश है, ये सब निराधार है, क्योंकि भगवान की सभी शक्तियों एक साथ विद्यमान रहती हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझे। यद्यपि वे हर वस्तु हैं किंतु वे हर वस्तु में उपस्थित नहीं रहते। ईश्वर की पूजा उनके मूल भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही की जानी चाहिए। वे अपने विभिन्न विस्तृत शक्तियों के अंश रूप भी विद्यमान रह सकते हैं, जब हम मंदिर में श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो यह अर्चा विग्रह पत्थर या लकड़ी का लगता है, लेकिन क्योंकि श्री भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, अतएव वे तो न तो पत्थर है न लकड़ी, फिर भी पत्थर तथा लकड़ी उससे भिन्न नहीं होते। इस प्रकार पत्थर या लकड़ी की पूजा करने से हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता, किंतु जब पत्थर या लकड़ी श्री भगवान के मूल रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें उस अर्चा विग्रह की पूजा करने में हमें वांछित फल प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन द्वारा होती है। जो यह लगता है ये बताता है कि श्री भगवान किस प्रकार अपने आप को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के संबंध में ये स्पष्टता कर देते हैं कि भगवान जैसे स्वतंत्र या स्वराट होते हैं, उसी तरह भक्ति भी स्वतंत्र या स्वराट होती है। भक्ति की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं निकाल सकता, जैसे भगवान का भी अंदाजा कोई नहीं निकाल सकता। दोनों स्वराट है, दोनों स्वतंत्र हैं। भगवान अपनी शक्ति से अभिन्न है। जिस तरह स्वरूप दामोदर ने हमें भगवान के नाम की जो अचिंत्य शक्ति का परिचय कराया है, और रूप गोस्वामी ने भी इसी आधार पर ये सारे अचिंत्य यानी कि हमारी खोपड़ी की मर्यादा के बाहर जो समझने में हम हमेशा असमर्थ रहते हैं, उसके लिए जो सिद्धांत बनाए हैं अचिंत्य के बारे में। तो अचिंत्य क्या होता है? जिन पर हम चिंता नहीं कर पाते, जिसका चिंतन भी नहीं कर पाते, चिंता भी नहीं कर पाते, हमें इनसे चिंतित रहने की भी आवश्यकता नहीं पता, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता भगवान की कोई जुट नहीं सकती। हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन हम परतंत्रता हमेशा महसूस करते हैं, क्योंकि जीव ये भौतिक शरीर जो मर्यादा में हमें बांध लेता है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, देश भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन परतंत्रता हमेशा ये भौतिक शक्ति पर बनी रहती है। इनमें से बाहर निकलना यानी कि भौतिक अवस्थाओं में हम जो परतंत्रता का अनुभव करते हैं उससे मुक्त होने का जो मार्ग है तो मुक्ति कहलाता है। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कि मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कहीं गड़बड़ी है, ना समझ है, तो ना समझ के कारण हम अपने आप को हमेशा परतंत्र मानते हैं। लेकिन हित्वा अन्यथा रूपम वो हम नहीं समझते हैं कि हमारा मूल रूप क्या है, वो समझते नहीं है। जब हम अपने ये शरीर को या शारीरिक अवस्था जो हम जबरदस्ती से अनुभव कर रहे हैं उसे तो छूटने की आवश्यकता होती है। तो हित्वा अन्यथा रूपम, हमने अपने ऊपर बहुत सारे रूपे थोपे हैं तो उसमें से निकलने का मार्ग अपनी वास्तविकता समझने में है। हम जो अवास्तविक जीवन जी रहे हैं उसके लिए प्रबल शक्ति जो हमारे अज्ञान को दूर करने वाली है वो तो भगवान का नाम ही है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापि त नियमित स्मरणेन काल एतादृशी भगवन एतादृशी कृपा भगवन मम अपि दुर्दैवम् इदृशम् इह जनिनानुराग। दुर्दशा हमारी ये है कि आपके नाम में सारी शक्तियां हमें अनुभव करने के लिए मिली हैं फिर भी आपके नाम पर ही अनुराग न हो तो हम कैसे ये चुंगाल से बाहर निकलेंगे। अज्ञानता का जो बंधन है वो तो तोड़ने के लिए भगवान ने बहुत कृपा करके अपना नाम का वितरण करने के लिए स्वयं आकर भी हमें समझाते हैं, फिर भी हमें कितना विश्वास इन पर है। ऐसी जड़ता महत्त्व के कारण उत्पन्न हुई है। भागवत के तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि यही जड़ता का उन्मूलन करने के लिए मैत्रेय मुनि को प्रश्न करते हैं, इस पर गौर से जरा देखना पड़ेगा। भौतिक सृष्टि बनाते समय भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है उसका अनुमोदन तो श्वेता सतर उपनिषद में भगवान की व्याख्या में ही बता दिया है। न च तस्य कारणम करणम च विद्यते न च त समासम अभी अधिकच्च न दृश्यते पराश शक्तिर विविधि श्रूयते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का न होने का या होने का कोई कारण नहीं, वे क्यों हैं ऐसा हम प्रश्न नहीं करते। भगवान है क्योंकि ये इनकी शक्तियां अपार हैं। भगवान का स्वभाव इनकी शक्तियों पूरे पूरा जानती है, इसलिए भगवान को इच्छा प्रकट करने की भी आवश्यकता न होती है कि अपनी शक्तियों को वो काम पे लगा दे। नहीं, स्वयं शक्तियां भगवान के स्वभाव को जानने का कारण वो स्वयं अपना काम कर लेती है। इसलिए जब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है तब हम भगवान का परिचय कर पाते हैं। जैसे कि नाम की शक्ति में यदि हमें पूर्ण पवित्रता आती है तो भगवान का दर्शन कराने में भी सक्षम है। ये भागवत धर्म में हमने बताया है जो शक्तियां का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर कैसे हमें चिंता चर्चा या करना चाहिए। फिर भी ये अचिंत्य शक्ति होने के कारण शक्तियों के बारे में जिन्होंने आत्मसात किया है, जैसे रूप गोस्वामी, उन्होंने इनको कहो कि फोन बंद कर दे, आपका फोन हमारा ध्यान कर रहा है। तो भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में स्पष्टता तो पहले करनी चाहिए। अचिंत्य तू ते खलु भावा तामस्तर के न योजयेत प्रकृतेभ्य परेभ्य स त्वाम अचिंत्यस्य लक्षणम। अचिंत्य किसे कहते हैं? ये प्रकृति जो है, यहां पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें पृथकता है और पृथकता भी नहीं है, क्योंकि एक ही शक्ति से उद्भव विकार है। तो अचिंत्य का जो सचमुच निदान करना है तो उसे अपने लॉजिक या तर्क से नहीं कर पाते, और करना भी नहीं चाहिए। यानी कि अचिंत्य शक्ति एक खोपड़ी का विषय नहीं है, चाहे वो 36 अंश की खोपड़ी हो या 32 अंश की, पुरुष की खोपड़ी हो या स्त्री की खोपड़ी। अचिंत्य का विश्लेषण करना इसके लिए अपनी मर्यादा से बाहर है, क्योंकि वो प्रकृति है, प्रकृति की बनी है खोपड़ी। लेकिन जो अप्राकृत है, प्रकृतेभ्यश्च परेभ्यश्च, प्रकृति से भी ऊपर वाली जो शक्ति है, ये अचिंत्य का लक्षण होता है। भौतिक अवस्था में हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भौतिक अवस्था को नाबुद करना सर्वप्रथम जैव धर्म कहलाता है। इसलिए अचिंत्य पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसे स्वीकारना, क्योंकि उसका अनुभव होता है, वो अवर्णनीय है। फिर भी हमारे आध्यात्मिकता का विकास करने में आदि शंकराचार्य भी अचिंत्य शक्ति का वर्णन करने के लिए थकते नहीं। उसके बाद रामानुज ने भी अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया है, और उसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने भी अचिंत्य का वर्णन किया है। वो स्वयं भगवान आदिशंकर अद्वैत सिद्धांत जो नास्तिक सिद्धांत है, वो भी छुपे छुपे कुछ अचिंत्य शक्ति की बात करते हैं, लेकिन इनका तर्क वितर्क सिर्फ शारीरिक भाष्य यानी कि भौतिक शक्ति में पलटने की भावना है। आप यही श्लोक ललिता देवी जो भौतिक शक्ति की सहचरी है, यानी कि दुर्गा माता की, तो उसमें भी यही श्लोक का उपयोग करते हैं। भगवान की विशेषतर यही व्याख्या जो श्वेतासतर उपनिषद के द्वारा दी गई है, ते न च तस्य कारणम करणम च विद्यते, जिनके लिए कोई कारण है होने का, न तो वो कुछ करते हैं, इनका वो स्वयं कुछ नहीं करते, तो बांसुरी बजाते हैं, वो तो कोई काम होता है क्या? एक काम नहीं, कर्म नहीं, भगवान को कर्म लागू होता नहीं। तो भगवान की पहचान करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं बताई। अकर्म यानी कि जो कर्म बंधन करता नहीं है वही करने को कहा है। अकर्म को यज्ञ कहते हैं, जो कर्म बंधन में से हमें छुड़वाता है। भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना ही अकर्म कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य ये भौतिक भूमिका में आकर कर्म करना अपना अधिकार समझ रहा है लेकिन फल में मना करते हैं भगवान, उससे उपरांत भी कहेंगे न कर्म हेतु फल हेतु भूर्मा ते अस्तो अंग अकर्मणी, तेरा संग अकर्म में होना चाहिए, कर्म में नहीं है, क्योंकि कर्म में फल का अधिकार तेरा नहीं। अधिकार कर्म करने में ही है, फल में नहीं है। ओ फल मिलेगा नहीं तो हम करें ही क्यों? अरे भैया, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप कोई हिरण आकर फंस नहीं जाती, उसे उठना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। एक तरफ श्रम है, दूसरी तरफ कर्म है। लेकिन कर्म के तीन विभाग बताएं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तीसरे अध्याय में इसकी सारी स्पष्टता हुई है। तो भगवान के लिए न तो कोई जबरदस्ती से कर्म करने की आवश्यकता होती है। वो जो करते हैं तो सब लीला में क्यों, लीला अकर्म है। भगवान अपने फल के लिए कोई काम करते नहीं। फल तो अर्पण हमें करना होता है, उसके कराए करे पर कौन किसको अर्पण कर सकता है। इसी तरह भगवान की सभी अचिंत्य शक्तियां जो काम करती हैं, तो कभी कभी भगवान लीला करने के लिए ऐसा करते हैं तो हमें सोच में डालते हैं। देखो ना, रामचंद्र भगवान ने शिवलिंग की पूजा की थी इसलिए शिव जी महान है, लेकिन हम चक्राव में पड़ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन अचिंत्य है। तो रूप गोस्वामी ने जो सिद्धांत बनाया है, तो अचिंत्य स्तुते खलु भावा तामस तर्के न योजयेत। तर्क भौतिक खोपड़ी की लिमिट में समझदारी का प्रभाव है। तर्क का आधार कोई नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो भिन्न नासौ मुनि यस्य मतिम न भिन्न धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथा। बेचारा भूखा है इसलिए कर रहा है। तर्क अप्रतिष्ठो, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, बेसलेस है, कभी टिकता ही नहीं, बदलता रहता है, धोखा देता है। और श्रुतियां भी जो समझाती हैं वो काफी लिमिटेड होता है कि एक श्रुति दूसरे श्रुति से अलग होती है। आप शिव पुराण पढ़ोगे और विष्णु पुराण पढ़ोगे तो दोनों में अंतर होता है, खोपड़ी चक्राव में डाल देती है। इसलिए जो सात्विक स्वभाव के लोग हैं वो सात्विक पुराण पढ़ते हैं, राजसिक स्वभाव वाले राजसिक पुराण पढ़ते हैं और तामसिक स्वभाव वाले तामसिक पुराण पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये तीन गुणों के, भौतिक गुणों के आधार पर ये श्रुतियां लिखी गई है। श्रीमद् भागवत इन सब से निराला है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, इनमें सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों का अभाव है। अविशुद्ध सत्व के ही बात करता है जो भगवान का स्तर है। और ये बारह बारह महाजन जिन्होंने भगवान को नक्षिक पहचाना है, तो उनकी भगवान के लिए जो समझ है उसके लिए हमें
भक्ति के भाव में ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, तत्तर को ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, वो जब अज्ञातवास में एक साल था तो काफ़ी तरस लगने के कारण सभी व्याकुल थे, तो लेकिन उसमें भी उन लोगों ने ये जो वैष्णव बुद्धि जो थी वो गवाही नहीं थी। सर्वप्रथम वयोवृद्ध माता कुंती की दशा इनसे दिखी नहीं जाती थी। कुंती स्वयं के दिख जाओ ने भैया पानी ले आओ ने, तब पहले नकुल सहदेव बाद में भीमसेन और उसके बाद अर्जुन एक के बाद पानी लाने के लिए सूचना कर रही है, कोई आता नहीं। हाँ, लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उसने अपनी खोपड़ी संभाली कि नक्की कोई भेद है, ये समझ में नहीं आता कि ऐसे परीक्षा कौन ले रहा है कि हम ये जानते हैं कि ये सब दैवी पुत्र थे, सामान्य तो थे ही नहीं। लेकिन जब भौतिक विषमता का जब प्रभाव होता है तो बुद्धि काम करने में रुक जाती है, सबको पहले पानी की इच्छा होती है और यह यक्ष मना करता है कि खबरदार जब पानी पिया तो मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दो। ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इस सामान्य कल्याण के लिए है, सब जनों को कल्याण के लिए है। तो युधिष्ठिर ही एकमात्र तैयार हुए। उसने भी पहले पानी पीने का सोचा था लेकिन उसको जो चैलेंज पड़ गई यक्ष की तो रुक गए। भाई पूछो, इसमें सबका कल्याण है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, सबके कल्याण में तो अपने भैयाओं का भी कल्याण आ जाएगा, तो हमें अलग से चिंता करने की आवश्यकता। तो ऐसे ऐसे जब प्रश्न पूछने लगे तब ये भी प्रश्न उसने पूछा कि भैया धर्म का रहस्य कहाँ छुपा है, धर्म पालन कर, धर्म क्यों पालन कर और कैसे पालन कर, पालन करने की आवश्यकता ही क्या है। तब उसने कहा धर्म कोई सामान्य खोपड़ी का तर्क का विषय नहीं, ना तो धर्म आप श्रुति शास्त्रों में इनका पालन करके अपने अपने ढंग से धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तीसरा, कोई एक महापंडित विचारक जो जिसे मुनि कहते हैं, एक मुनि यदि दूसरे मुनि से सहमत होता है वो तो असंभव है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, हर एक खोपड़ी में अलग अलग मति के अनुसार वो लोग सोचते हैं, यानी कि कभी एकजुट होते नहीं। यदि धर्म का तत्व आपको पाना है तो ये 12 महाजन ने जिन रास्ते पर उन्होंने चल के करके बताया है वही रास्ते पर चल, उसमें ही मिले। तो महाजनों ये न गतस्य पंथा, अपने ब्रह्म से चलकर ब्रह्मा नारद व्यास इत्यादि की जो श्रृंखला और परंपरा चली ये सब महाजन, गुरु शिष्य परंपरा महाजनों के कदमों में चलने पर ही तो प्राप्त होती है, और वो लोग शास्त्र सुसंगत होते हैं। और खास करके गुरु के रूप में आते हैं तो उनको शास्त्र पारंगत होना ही चाहिए, लेकिन सभी शास्त्रों में पारंगत होने की कहीं आवश्यकता नहीं, वहां स्पष्ट लिखा है शास्त्रे परेच निष्णातम ब्रह्मणि समुपाश्रय तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय और लंबे समय का जो परम सत्य हमें सनातन अवस्था में पहुंचाने वाला है वो यदि प्राप्त करना है तो ऐसे गुरु के पास जाओ को जो सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ जिनके पास है वही बता सकता है। जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए, तो इसी तरह अपनी परंपरा में ये चला आया है तो हमें ये जानने की आवश्यकता तो होती है। जब यहाँ नारद मुनि स्वयं युधिष्ठिर महाराज को संस्कृत मनुष्यों के लिए जो उपदेश देते हैं तो उसमें ये आज का जो श्लोक आया है तो वो काफ़ी सराहनीय है और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है उसे तो हमें काफ़ी परिचित होने की आवश्यकता है। तो जो चीज अचिंत्य है जिसका हम चिंतन नहीं करते हैं तो वो पाने के लिए जो नहीं करना है उसे ही सावधान होता है। नहीं तो आदिशंकर भी भगवान की अचिंत्य शक्ति पर मुरीद हो जाते हैं। तो शारीरिक भाष्य लिखने के बावजूद भी उन्होंने कंक्लूजन में भज गोविंदम क्यों कहा है और मूढ़ मते सिर्फ व्याकरणों की अटपटी भाषाओं में अर्थ के अनर्थ निकालने से क्या फायदा। जो वेदों का ही उपयोग करके अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करने वाले आदिशंकर कितने चालाक हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा प्राप्त की है और कलयुग में जो नास्तिक धर्म स्वयं भगवान ने बुद्ध अवतार में आकर स्थापित किया क्योंकि वो आवश्यकता थी और पुनः स्थापित करने के लिए जो झूठ का मार्ग भी भगवान की सेवा में अपनाने में आदिशंकर तत्पर रहे क्योंकि इनका आदेश है। मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्न गुड बौद्धम मयाते विहिता देवी ब्राह्मण रूपेण कलिना। ये कलयुग में मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और अटपटी भाषाओं में व्याकरण के संस्कृत व्याकरण की अटपटी भाषाओं में असत शास्त्र में प्रस्तुत करूंगा जिसके द्वारा लोग स्वयं को भगवान अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि की परिभाषा शारीरिक भाष्य में उन्होंने बनाई और सबकी खोपड़ी को चक्राव में डाल दिया। सारे संसार यही मायावाद का शिकार बन गया। कभी आप तर्क से मत पूछना कि अमेरिका में ये मायावाद कैसे पहुंच गया। यह अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। भौतिकवादी बनना वो तो सर्वप्रथम ये सत्व रज और तमोगुण के बंधन में जब आए तब, वो तो तीसरे स्कंद में स्पष्टता कर दी है मैत्रेय मुनि ने कि भगवान ने सर्वप्रथम 24 तत्व बनाए उसमें 5 इंद्रिया 5 इंद्रियों के विषय और 5 इंद्रियों के जो साधन है वो बनाए तो 15 हो गए। उसमें भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम ये 3 यानी कि 5 सूक्ष्म तत्व और 3 अति सूक्ष्म तत्व जो मन बुद्धि और अहंकार। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तो रूपांतर करने में भगवान ने ऐसी चालाकी बना दी कि उसमें तो देवता बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा स्वयं व्यासदेव ने ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की व्याख्या में ही बताया जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरश्चास्त्रे अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कहि मुह्यन्ति सूरयः। सूरयः सारे देवतागण मुह्यन्ति। ये जो जन्म आदि का सारा प्रवर्तन भौतिक अवस्था में जीव का कर रहे हैं हाँ, तो इसमें देवताओं को मोहित होने की क्या जबरदस्ती पड़ गई? जब देवता मोहित होते हैं तो मनुष्यों की तो बात ही कहाँ, और जिसकी दुर्बुद्धि है ऐसे दानवों की तो बात ही अलग है, उल्टा ही समझेंगे। हाँ, लेकिन वहां स्पष्टता प्रभुपाद जी बता देते हैं, देखो इतना ही छोटा सा जन्म आदि यस्य यत, इतना ही श्लोक आपको ब्रह्मसूत्र का दूसरा श्लोक मिल जाए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद में तुरंत ये जो फॉर्मूला है ब्रह्मसूत्र। तो इसका विस्तार 18,000 श्लोकों में व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना में बना दी, कितनी स्पष्टता। फिर भी जब तक स्वानुभव नहीं होता भक्ति के बारे में, तब तक अनुभव होगा नहीं, सुनने से नहीं होता है, सिर्फ बोलने से भी नहीं। नायम आत्मा न प्रवचने न लभ्य अथवा बहुना श्रुते न वा। तो भगवान अपनी स्वतंत्रता कभी गंवाते नहीं, हम गंवा देते हैं मोहित हो जाकर। ये 24 तत्वों की चुंगाल में फंस गए, तो 23 तत्व तो गिना दिए, 5 इंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 15 हो गई, और ये 8 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार 23 हो गए। बाद में चौथे स्कंद में फिर इनका वर्णन आता है कि ये महत्तत्व जो सत्व रज और तमोगुण में लपेट कर 84,00,000 योनियां बनाते हैं। तो ये एक गुण आया, महत्तत्व फंस गया अंदर, जीवात्मा को भी फंसाते हैं और परमात्मा भी अंदर इनके साथ एक कंपनी करके आता है। तो कितने हुए, कितने हुए? 27। हाँ, गिनो फिर से। ये सारी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा रचना की है। महत्तत्व, आत्मा, परमात्मा। यदि कोई महत्व को, महत्तत्व को दो और, यानी कि सत्व रज और तमोगुण, ये तो मिश्रण है, कभी कोई शुद्ध सत्व में भगवान के अलावा कोई होता ही नहीं। सत्व का मिश्रण होता है, ये भौतिक अवस्था में शुद्ध सत्व नहीं मिलेगा। जो शुद्ध सत्व है वो ही सत्व को संभाल पाएगा, इसलिए विष्णु भगवान सत्व गुण के संचालक रहे, शिव जी को तमोगुण का संचालन दिया है और ब्रह्मा जी को रजोगुण का। लेकिन ये सत्वगुण और तमोगुण दोनों दोनों को फंसाते हैं कभी कभी, लेकिन सत्वगुण मनुष्य को फंसाता है, सत्वगुण मनुष्य को बंधन में रखता है। सत्वगुण के परिणाम क्या आते हैं? ज्ञान और आनंद, आनंद यानी सुख, दो की भावना चिपकी रहती है, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं होती है। सत्वगुण में भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति तहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, अपने मूल स्वरूप पर आना और मूल स्वरूप शरीर का नहीं बताया है, आत्मा का बताया है। आत्मा का मूल स्वरूप जो भगवान का अंश होने के कारण भगवान की गुणवत्ता वाला है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं है। एक आश्रित है, दूसरा आश्रयदाता है। तो कठोपनिषद के नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान सिद्ध हो जाता है। ये उपनिषद जो धीरे धीरे परम सत्य की ओर ले जाने वाले हैं वो गुरु के माध्यम से सीखना पड़ता है। उप यानी ज्ञान और उपदेश जो मिलता है उपनिषद यानी कि गुरु के पास बैठकर ही हमें प्राप्त होने वाला जो मार्मिक ज्ञान है, अनुभूति वाला, अपने हृदय को आनंद देने वाला और ये भवबंधन काटने का जो ज्ञान है वो मुक्ति कहलाती है, वो गुरु के माध्यम से प्राप्त है। और गुरु भी कैसे करते हैं, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो। ये कोई खोपड़ी का विषय ही नहीं है। हमें क्या करना है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जन्मे जन्मे प्रभु से यानी कि अपने गुरु वो क्या देंगे, वो चक्षुदान दे देंगे। ये चक्षु दिव्य चक्षु बन जाते हैं, जैसे अर्जुन को भी विश्वरूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे उसी तरह शास्त्र चक्षु होने की आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र परेच निष्णातम गुरु का धंधा है, जो आध्यात्मिक भक्तिवर्धक जो शास्त्र है, शास्त्र परे परे यानी कि भौतिक अवस्थाओं से परे ले जाने वाला जो शास्त्र है उसका निचोड़ जिसके पास है ऐसे एक्सपर्ट श्री प्रभुपाद के शरण में जाने की आवश्यकता है। तो इनके जो सारे तात्पर्य हमें कितने लाभदायी हैं वो समझना है। तो यहां स्पष्टता करते हैं कि जैसे हम भगवान के विग्रह के सामने आते हैं तो विग्रह तो पत्थर की मूर्ति है, कोई लकड़ी की मूर्ति है लेकिन क्या ये पत्थर और लकड़ी से क्या सिद्ध होता है, नहीं, इनका नाम विग्रह ही क्यों रखा है, नहीं तो मूर्ति नहीं कह देते। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम विग्रह सेवा करते हैं। तो आप जरा डिक्शनरी में देखिए, ये तो हमने ...1980 में जब हम गुजरात आए थे तब सूरत का न्यूज़पेपर उसमें कई आध्यात्मिक चर्चा, तो उसी तरह आयुर्वेद के बारे में कोई लेख आया था, उसमें शरीर तेरे कितने नाम की चर्चा हुई थी और दरेक की व्याख्या, दरेक शब्दों की व्याख्या, क्योंकि भगवान बहुत सारे शब्दों का उपयोग जो शरीर को निर्देश करने के लिए करते हैं। देह है शरीरम, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं तो करीबन 11 और 12 नाम है देह के लिए और हर एक अलग अलग प्रक्रिया जो देह करता है उसके आधार पर नाम, तो उसमें विग्रह नाम भी है। चीयते जीर्यते इति देह एक व्याख्या बताई है देह का, जो जिसका विकास होता है जिसका नाश भी होता है, जिसमें चय और अपचय की क्रियाएं होती है उसका भी नाम देह का ही तो बना है। तो इसी तरह वर्ष्म भी नाम दिया है, वर्ष्म यानी कि एक शरीर अपने जैसा ही दूसरा शरीर पैदा करने में के लिए सक्षम है इसलिए वर्ष, और जो पैदा हुआ है शरीर उसको तनु भी बोलते हैं, तनु। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम, भगवान ये कहते हैं कि ये तनु शरीर का नाम है, मैंने जैसे एक शरीर में आश्रय लिया है ऐसा वो लोग समझते हैं। अब जानती मां मूढ़ा, ये मूर्ख है, तो उसी तरह जो शरीर जो दिखाई देता है वो यदि आपकी आध्यात्मिक संवेदना की आपले कर सकते हैं वो विग्रह कहलाता है। मूर्ति पूजक को कर्मकांड करना पड़ता है, हमें कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। अपना हृदय भगवान के नाम से जितना शुद्ध होता है तो विग्रह सेवा में आपको तादात्म्यता प्राप्त होगी। लेकिन जो मायावादी हैं वो लोग ये बात नहीं समझते हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति को हम ले आते हैं, भगवान को भगवान का दर्शन कराते हैं। आपने देखा बहुत सारे आते हैं, पता नहीं ये क्यों करते हैं। और कहीं तो अपने घर में अपने सुख दुख की संवेदना ये भगवान की मूर्ति पर डाल देते हैं। भगवान को प्रेम करना है तो भगवान की मूर्ति से प्रेम करो और अपना शरीर उसके शरीर के साथ चिपकाओ, चुंबन करो। हमने देखा है, हमने डांट मारी है सबको कि ये क्या तमाशा नहीं तो, क्योंकि मायावादी है, खुद माया की पुतली है और भगवान को भी माया की पुतली बना देते हैं। तो परिणाम क्या आएगा? कुछ तो यहां जो अचिंत्य शक्ति के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने इंगित किया है वो बहुत स्पष्टता करनी चाहिए, क्योंकि सारे धर्म गुरु आचार्य, चाहे वो नास्तिक धर्म फैलाने वाले आदि शंकरा हो और वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले लक्ष्मी नारायण की स्थापना करने वाले रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य वो तत्ववादी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा में गए तो तत्ववाद के साथ भी भिड़े हैं। हमने मध्वाचार्य संप्रदाय से ही हमारी लिंकेज आती है, फिर भी जो तत्ववादी हैं तो सिर्फ एक ही हमारे साथ मिलजुलता, वो भगवान के स्वरूप में श्रद्धा रखते हैं। और ये विग्रह उडुपी में जाओ तो तत्ववादी हैं, उन्होंने पूर्ण प्रज्ञान पीठ स्थापी हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं और शास्त्रों की चर्चा में वो ये सिद्धांत रजू करने के लिए ही करते हैं कि भगवान सगुण है लेकिन आध्यात्मिक सगुणता है, भौतिक सगुणता नहीं है, बस इसमें ही उलझे। लेकिन भगवान से नाता जोड़ा, पांच जो संबंध हैं, पांचे पांच संबंध में जो प्रेम प्राप्ति है, आप न्यूट्रलिटी में यानी कि निर्गुण भावना से आप भगवान को भजो, लेकिन उसे ज्यादा सगुणता यानी कि आप सेवा के भावना से भी बच सकते हैं, उसके उपरांत भ्रातृ प्रेम में भी बच सकते हैं, वात्सल्य भाव में भी बच सकते हैं और माधुर्य भाव में भी बच सकते हैं। तो वो तो कृष्ण भगवान के साथ ही संबंध है। वैकुंठ में सिर्फ एक ही ओ एन रेवरेंस मिलेगा, शांत स्वभाव। तो अवश्य ये अचिंत्य के लिए जो आग्रह है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने करा है, तो ये माया ततम इदम जगत सर्वम अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न च चाहम ते स्ववस्थितः। भगवान कहते हैं कि ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सभी जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो यही तो कृष्ण तत्व है, और उसकी प्रतीति गुरु के माध्यम द्वारा करनी होती है। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तम ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। हाँ, यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। वहां तक कह देते हैं तत्व के बारे और तत्व की स्पष्टता करते हैं कि एतान्य भूतान्य शेषाणि द्रक्षस आत्मन्यथो मई। ये सारे जीव मेरे अंश हैं, वो मेरे में हैं और मेरे अधिकार। इनके साथ संलग्नता बनाने की जबरदस्ती यदि प्रेम में पड़ती है, भगवान के साथ प्रेम पैदा करने में जो पड़ती है, तो क्यों नहीं। हाँ, ये बंधन वाली स्थिति नहीं, ये मुक्त जीवन के बाद ही प्राप्त होना संभव होता है। हाँ, तो ये विशुद्ध भक्ति का प्रतिपादन यहाँ फिर से अचिंत्य भेदाभेद तत्व द्वारा करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? सब पेट के प्रश्न के लिए सोचते हैं, वो भी आवश्यक है। कोई प्रश्न हो तो फटाफट दो मिनट में छोड़ दूंगा। चालू है? बहुत लंबा प्रश्न मत करना। भक्ति करते ही मूल स्वरूप प्राप्त होता है ना? है? हाँ, तो गुरु सेवा करो तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। तुम्हारा माइक तो चलता नहीं है, समझ में आता है? बंद कर दिया था। बोलो जल्दी फटाफट, एक मिनट निकल गई। हाँ, उसके लिए सिर्फ गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, निष्ठा कितनी है, कहाँ तक पहुंचे हैं अपनी साधना, सब पर आधार रखता है। हाँ, पहले मुक्त तो करो, निष्ठा लाओ, बाद में देखा जाएगा। हरि बोल। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय।